फरवरी वर्ष 1963 भारत चीन युद्ध समाप्त हो चुका था। मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा था। मौन पहाड़ों पर जमी बर्फ अब कुछ पिघलने लगी थी। कुछ महीने पहले मूक दृष्टि से वृक्ष पर्वत और पूरी प्रकृति ने जो देखा था उसे आखिर कब तक धरा अपने भीतर सब कुछ छिपा कर रख सकती थी। अब दुनिया को बताने का समय आ गया था। एक लद्दाखी चरवाहा भेड़ों के झुंड के साथ चुशूल में रेंजांग ला से गुजर रहा था। ऋतुराज के आगमन से सज उठी मनमोहक प्रकृति का आनंद ले रहा था कि अचानक उसे बर्फ में दबा बंदूक थामे हाथ दिखा। उसके पैर वहीं ठहर गए। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर भयानक दृश्य देखकर वो सन्न रह गया था। चारों तरफ भारतीय जवानों के मृत शरीर बिखरे हुए थे। उनके हाथों में हथियार थे। गोलियों से शरीर छलनी हो रखा था और आंखें शून्य को ताक रही थी। यह था युद्ध का अंत। सब काल और अनंत का हिस्सा बन गए थे। वह दृश्य दिल दहला देने वाला था। चरवाहा बिना समय गवाए नजदीक की भारतीय पोस्ट पर पहुंचा और अफसरों को इसकी सूचना दी। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की। वे प्रेस सूचना ब्यूरो के अफसरों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृत सैनिकों की शिनाख्त की गई। 113 भारतीय सैनिक लड़ते हुए मारे गए थे। जिस बोल्डर के पीछे चरवाहे को हाथ में बंदूक लिए शव दिखा था वे थे कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन के मेजर शैतान सिंह, जो अपनी अंतिम सांस तक सैनिकों को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उत्कृष्ट वीरता, प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए आज भारत माता के इस वीर सपूत को नमन करते हुए उनकी अतुलनीय शौर्य गाथा सुनते हैं। आइए आज भारत माता के इस वीर सपूत को नमन करते हुए उनकी अतुलनीय शौर्य गाथा सुनते हैं। 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के गांव बानासर में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह फ्रांस में लड़े गए प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। उन्हें OBE अर्थात ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रदान किया गया था। पिता की उपलब्धियों ने शैतान सिंह को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। शैतान सिंह की पढ़ाई लिखाई राजपूत हाई स्कूल चौपासनी जोधपुर से शुरू हुई। उन्हें खेलों में बहुत दिलचस्पी थी और फुटबॉल प्रिय खेल था। भारतीय सेना की ओर से वो फुटबॉल खेला करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद शैतान सिंह ने जोधपुर लांसर्स में प्रवेश लिया। यह एक हॉर्स स्क्वाड्रन थी। कुछ समय पश्चात जोधपुर राज्य के सेना बल को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था और मेजर शैतान सिंह ने कुमाऊं रेजिमेंट में प्रवेश किया। अपने नाम के एकदम विपरीत मेजर शैतान सिंह नम्र और शांत स्वभाव के थे। 25 नवंबर 1955 में उन्हें कैप्टन के रैंक पर प्रमोट किया गया। उन्होंने ऑपरेशंस ऑफ नागा हिल्स और 1961 इंडियन एनेक्सेशन ऑफ गोवा में हिस्सा लिया। 11 जून 1962 को उन्हें मेजर रैंक पर पदोन्नत किया गया। 1962 का भारत चीन युद्ध भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी, साहस और दूरदर्शिता के बल पर लड़ा। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चुशूल सेक्टर के रेजांग ला में 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को तैनात किया गया। इन 123 सैनिकों में अधिकतर अहीर थे और मेजर शैतान सिंह इस कंपनी के कमांडर थे। भारतीय जवानों को यह लड़ाई अपने बलबूते ही लड़नी पड़ी। उनके अफसर उनके साथ नहीं थे और न ही उनके साथियों को इस लड़ाई की कोई सूचना थी। सैनिकों के पास पुरानी बंदूकें और अति साधारण कपड़े थे, फिर भी भारतीय सैनिकों में जोश की कोई कमी नहीं थी। 18 नवंबर 1962, उस दिन ठंड कुछ ज्यादा थी, शायद तापमान -30 डिग्री रहा होगा। सवेरे 3:30 बजे चीनी सैनिकों ने भारतीय कैंप पर हल्की मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू की। पोस्ट पर तैनात मेजर शैतान सिंह ने पलटन 8 के अफसर से संपर्क स्थापित किया और उन्हें पता चला कि चीनी सैनिकों ने संचार यंत्रों को नष्ट करने की कोशिश की थी, पर वे नाकाम रहे क्योंकि पलटन 8 जवाबी हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों को चौकस रहने का आदेश दिया। सुबह 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को अंधेरे में आगे बढ़ते हुए देखा। मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वे सब वीर अहीर हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शपथ ली है। उन्होंने दुश्मन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए। सुबह 5:40 पर चीनी सेना ने पुनः मोर्टार से हमला करना शुरू कर दिया। लगभग 350 चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। सामने से किए गए हमले असफल होने के बाद चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। लगभग 400 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। साथ ही 8वीं प्लाटून पर मशीन गन और मोर्टार से पोस्ट के तार बाड़ के पीछे से हमला किया गया और 7वीं प्लाटून पर 120 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। उन्होंने भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी और गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। भारतीयों ने 3 इंच मोर्टार के गोले से मुकाबला किया और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, पर उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के लेटेस्ट अम्यूनिशन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 15 मिनट के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया था। चारों ओर हाहाकार मच गया। 7वीं और 8वीं प्लाटून में से कोई जीवित नहीं बचा। मेजर शैतान सिंह ने इस विषम परिस्थिति का डटकर सामना किया। उन्होंने घायल सैनिकों के उपचार का प्रबंध किया, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, उनका साहस बढ़ाया और लड़ मर जाने के लिए प्रेरित किया। तापमान गिर जाने से बहुत ठंड थी। सूती कपड़े पहने सैनिकों की हाथों की उंगलियां जमने लगी थी और उन असाधारण जूतों में लगातार बर्फ में खड़े होने के कारण पैरों की उंगलियां गल रही थी। वे अपनी बंदूक चला नहीं पा रहे थे। 123 इन वीर अहीर सैनिकों में केवल 20 सैनिक ही जीवित बचे थे। वे सब अपने बंकर से बाहर निकले और हैंड टू हैंड कंबाट में कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। श्री कृष्ण की धरती के ऊंचे और बलिष्ठ इन भारतीय सैनिकों के सामने चीनी सैनिक टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन चीनी सैनिक याक और घोड़ों पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए। इसी दौरान गोली लगने से मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। अपनी पलटन के चहेते कमांडर को घायल देख सैनिकों ने फैसला किया कि किसी भी हाल में मेजर शैतान सिंह को चीनी सैनिकों के हाथ नहीं आने देंगे। मेजर बेहोशी की हालत में थे, लगातार खून बह रहा था। सैनिक बारी बारी से उन्हें अपनी पीठ पर लादे हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहे थे। कुछ ही देर में चीनी सैनिकों ने चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह जान गए थे कि उनका सफर यहीं तक है, क्योंकि इस तरह आगे बढ़ने से बचे हुए सैनिकों की जान खो देने का डर था। उन्होंने सैनिकों से कहा कि यह उनका आदेश है कि वे उन्हें वहीं छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। उन्हें पता था कि आदेश न देने पर सैनिक उन्हें इस अवस्था में कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। अपने बहादुर अफसर और प्यारे दोस्त के आदेश को मानते हुए भारी मन से मेजर शैतान सिंह को एक बोल्डर का सहारा देकर सैनिक आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद मेजर वीरगति को प्राप्त हो गए, पर 3 महीने बाद भी गन उनके हाथ में थी। 123 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक शहीद हो गए थे। बचे सैनिकों को दुश्मन ने युद्धबंदी बना लिया था। 1300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। वहां से जाते समय चीनी सैनिकों ने वीर भारतीय सैनिकों को नमन करते हुए बर्फ में अपनी बंदूकें गाड़ दी। भारतीय सैनिकों में से सैनिक निहाल सिंह और कैप्टन रामचंद्र यादव दुश्मनों से बचकर जब भारतीय पोस्ट पर पहुंचे और अफसरों को युद्ध का भयावह अंत सुनाया तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। 3 महीने बाद चरवाहे की सूचना पर जब भारतीय अफसर रेजांगला पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। प्रेस द्वारा खबर मिलने पर हर एक भारतवासी फूट फूट कर रोया। रेजांगला को नो मैंस लैंड घोषित किया गया। दोनों में से कोई भी देश उस पर अधिकार नहीं जता सकता था। शहीदों की स्मृति में रेजांगला पर एक स्मारक बनाया गया है। आज भी जब जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड वहां विचरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे उस स्मारक की रखवाली कर रहे हों। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप द्वारा रचित यह गीत 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को समर्पित किया गया, जिसे सुन आज भी हृदय रो पड़ता है। क्योंकि युद्ध में अकेले पड़ चुके उन सैनिकों की चीखें, सहायता के लिए चित्कार, देश पर मर मिटने की कस्में जो उन वादियों में महीनों तक गूंज रही थी, आज भी सबके कानों को भेद रही हैं। जय हिंद।